भूमि की आंखों से आंसू आ गए थे। ये पहली बार था जब उसे इस तरीके से किसी के सामने, वो भी पूरे परिवार के सामने, ऐसे मुजरिम की तरह खड़ा किया गया था। हालांकि किसी को भूमि पर शक नहीं था, लेकिन आकाश के कहने के बाद सब लोग एक साथ भूमि को देखने लगे थे। भूमि के लिए ये कुछ नया सा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका मन भारी हो रहा है। उसने आज से पहले कभी भी खुद किसी भी काम के लिए दोषी महसूस नहीं किया था, पर आज इन सब की निगाहें उसे दोषी महसूस करवा रही हैं। प्रणाली ने गुस्से में भूमि को देखा और अमृता से कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखा करो। ऐसे लोग जो कि छोटी जगह से आते हैं, पैसा और महंगी चीज देखकर उनके मन में लालच आ ही जाता है। अमृता गुस्से में कहती है, मामी बुआ आप क्या बोले जा रही हैं? मैंने कहा ना कि भूमि ये नहीं कर सकती है। मुझे भूमि पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ही थी और उसने ये नहीं किया है। जानवी जल्दी से अमृता के पास आती है और उसे कहती है, अमृता हम भूमि पर शक नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई भूमि पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर वो हार भूमि ने ही अलमारी में रखा था तो फिर वो हार कहाँ गया है? देखो ये कोई एक दो रुपये का सामान तो है नहीं जिसके गुम हो जाने से हम में से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाखों का हार है, ऐसे घर से चोरी हो जाना अच्छी बात नहीं है। भूमि की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी से वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे ऐसा जाता देख सबके चेहरे पर हैरानी थी और अरुणिमा के चेहरे पर भी मायूसी थी। भूमि अपने कमरे में जाती है और पांच मिनट बाद अपने हाथों में एक एनवेलप लेकर बाहर आती है। वो उस एनवेलप को आस्तिक के सामने करती है और रोते हुए आस्तिक से कहती है, राजा साहब ये स्कॉलरशिप के पेपर हैं और उस बॉन्ड के पेपर हैं जो गवर्नमेंट ने मुझे दिए हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई महंगी चीज़ नहीं है। आप चाहें तो ये सब रख सकते हैं, लेकिन मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम मत लगाइए, मैंने ये चोरी नहीं की है। भूमि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा देखकर आस्तिक का मन पसर जाता है। उसने अपनी नज़रें टेबल पर डाली तो सच में उसमें भूमि के स्कॉलरशिप का अमाउंट गवर्नमेंट बॉन्ड के पेपर थे। आस्तिक कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अरुणिमा जल्दी से भूमि के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। और अरुणिमा के गले लगते ही भूमि जोर जोर से रोने लगती है और अरुणिमा ने गुस्से में सबको देखते हुए कहा, खबरदार जो किसी ने भूमि के ऊपर उंगली उठाई तो, और किसी ने सवाल जवाब किया तो। भूमि मेरी बेटी है, मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ और मैं भूमि पर कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगी। भूमि पर उंगली उठाना मुझ पर उंगली उठाने के बराबर है। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और गहरी सांस छोड़ते हुए सबको देखकर कहता है, बाहर चलो सगाई का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और इस बारे में हम आहान के परिवार से बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो बात है वो परिवार वालों के बीच रहे तो ही बेहतर है। आस्तिक अपने सिंहासन से उतरने ही वाला था कि इतने में अनंत आस्तिक के सामने आ जाता है और उससे कहता है, ऐसे कैसे पापा, आपने सिंहासन पर बैठकर राजा साहब वाला फैसला तो सुना दिया है, लेकिन मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया है और एक वकील होने के नाते मैं कटघरे में खड़े किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति को जब तक निर्दोष साबित नहीं कर देता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। आस्तिक हैरानी से अनंत को देखने लगता है और बाकी सबके चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ जाते हैं। अनंत ने रिस्पेक्ट से आस्तिक को देखते हुए कहा, बैठ जाइए राजा साहब, मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि दोषी अभी भी हम सबकी पहुंच से बाहर है और एक बेगुनाह को दोषी करार दिया जा रहा है। आस्तिक वापस जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है और अरुणिमा उसके पास में लगी कुर्सी पर बैठ जाती है। सारा परिवार भी सामने खड़ा था और आकाश अपने हाथ बांधते हुए अनंत को देख रहा था। वो बस ये देखना चाहता था कि उसका वकील भाई किस तरीके से इस घर के केस को सॉल्व करता है। अनंत ने किसी पेशेवर वकील की तरह सब लोगों को देखते हुए कहा, तो जनता में मौजूद सभी लोगों के सामने मैं इस केस को अपने हाथों में लेता हूं और इस केस का नाम है अमृता का खोया हुआ हार। मेरे सीधे हाथ पर है भूमि, जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी सहेली का हार चुराया है, लेकिन उनके चेहरे को देखकर ये कहीं से भी नहीं लगता है कि वो चोरी जैसा जुर्म करेंगी। मेरे उल्टे हाथ पर है सिंघल के बड़े राजकुमार यानी कि आकाश रायचंद, जिन्होंने भूमि पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अमृता का हार चुराया है। आकाश एकदम से हैरान हो जाता है और वो अनंत को देखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है, मैंने ऐसा कब कहा है, मैंने भूमि का नाम भी नहीं लिया है, तो फालतू में मुझे इन सब में मत घसीट। अनंत के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो आकाश को देखकर कहता है, क्या बात है भाई, मैंने तो आपको अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, आपसे तो सवाल जवाब भी शुरू नहीं हुए हैं और आप अभी से बौखला गए हैं। और ऐसे तो वही इंसान बौखलाता है जिसके दिल में चोर होता है, क्योंकि जब भूमि पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो वो तो आपके जैसा नहीं बौखलाई थी, वो तो चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। आकाश गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अनंत तुम होश में तो हो, कहना क्या चाहते हो, अमृता का हार मैंने लिया है?
भाई, इमेजिन करने में भी आप हार में अच्छे नहीं लग रहे हो, तो अमृता का हार आपके लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आपने भूमि पर इल्जाम लगाया है, तो क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भूमि ही वो चोर है जिसने अमृता का हार चुराया है? क्या आपने उसे देखा है अमृता का हार चुराते हुए? अनंत अपने वकीलों वाली दलीलों को सामने रखते हुए कहता है। आकाश अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है और मैं उस पर इल्जाम भी नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस एक बात कह रहा था, बाकी सब लोगों ने भूमि को अपने आप से इन सब में घसीटा है। अनंत कहता है, ठीक है भाई, ठीक है, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? अभी तो केस शुरू हुआ है और मेरी मौकिल का पक्ष अभी बाकी है। उसके बाद अनंत भूमि के पास जाते हुए कहता है, हाँ तो भूमि जी, आप पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या आप उस इल्जाम को स्वीकार करती हैं? भूमि उदास चेहरे के साथ अनंत को देखती है और धीरे से नामे सर हिलाती है। तो अनंत मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो आप हाँ कहती तो भी कोई नहीं मानता।